ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व।
नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति लोकतंत्र का महापर्व में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है और हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा के बारे में। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से शुरू हो चुकी है। अभी तक दो चरणों में 102 सीटों और 88 सीटों यानी 190 संसदीय सीटों पर मतदान हो चुका है। इन निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं ने अपना राष्ट्र के लिए अपना संकल्प ईवीएम का बटन दबाकर जाहिर कर दिया है। हालांकि इस परिणाम की घोषणा 4 जून को ही होगी। श्रोताओं, परसों यानी 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में 13 राज्य की 89 सीट की बजाय 88 सीट पर ही मतदान हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण चुनाव तीसरे चरण के लिए पुनर्निर्धारित हुआ। इस चरण में 95 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान और अभी तक दो चरणों के अनुभव को देखते हुए निर्वाचन आयोग लगातार मौसम विभाग से संपर्क में है और रोजाना इसको लेकर बैठकें भी हो रही है ताकि मतदान प्रतिशत में कमी नहीं आए।
श्रोताओं, चुनाव के हर चरण से पहले गर्मी की स्थिति पर टास्क फोर्स की नजर है। लोकतंत्र के महापर्व में गर्मी मतदाताओं की हिम्मत पर भारी न पड़े, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में चुनाव आयोग संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार बैठक कर रहा है। चुनाव के हर चरण से पहले मौसम का पूर्वानुमान लिया जा रहा है। मतदाता को गर्मी से दिक्कत न हो, इसके लिए मतदाता केंद्रों पर इंतजाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान के हर चरण के पहले गर्मी की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आम चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव से पूर्व में भी गर्मी की चिंता को लेकर बैठक की गई। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और गर्मी की लहरों की रिपोर्ट के मद्देनजर आयोग ने बदलते मौसम को समझने और आम चुनावों के दौरान गर्म मौसम के कारण किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा की और संबंधित एजेंसियों को इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में चुनाव आयुक्तों के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभाग प्रमुख और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक शामिल हुए।
सूत्रों, इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आवश्यक हुई तो एक कार्यबल मौसम में किसी भी प्रकार के बदलाव और शमन उपायों के लिए मतदान के प्रत्येक चरण से 5 दिन पहले गर्मी की लहर व आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा करेगा। आयोग ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक हिदायत दे कि वे चुनाव संचालन को प्रभावित करने वाली लू की स्थिति के लिए तैयारी रखें और सहायता प्रदान करें। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को भी एक सलाह जारी की थी। उसके अनुसार मतदान केंद्रों पर शामियाना, पीने के पानी, ORS, पंखे और अन्य आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं आदि सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग से समीक्षा की व्यवस्था तय की गई है। चुनाव आयोग मौसम विभाग की रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहा है ताकि मतदान कर्मी एवं सुरक्षा बलों, उम्मीदवार और राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ मतदाताओं की सुविधा एवं उनका हित सुनिश्चित किया जा सके।
श्रोताओं, अब बात करते हैं वर्ष 1999 में हुए आम चुनाव की। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और देश में हर 5 साल में होने वाले आम चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। ऐसा ही एक चुनाव वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। हालांकि उल्लेखनीय बात यह थी कि यह चुनाव 5 साल पर नहीं हो रहा था, बल्कि यह एक मध्यावधि चुनाव था। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली थी। यह सरकार 13 महीने के बाद संसद में हुए विश्वास मत परीक्षण के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके बाद 1999 का लोकसभा चुनाव कराया गया। देश का 13वां लोकसभा चुनाव देश में स्थिरता का दौर लेकर आया। आइए जानते हैं 1999 में हुए लोकसभा चुनाव की कुछ दिलचस्प जानकारियां।
1999 में राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर विपक्ष ने दावा किया था कि हमारे पास 272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं। संसद में हुए शक्ति परीक्षण में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। हालांकि विपक्ष ने जो 272 का दावा किया था वो खोखला निकला और 13 महीनों में देश को चुनाव के अंदर जाना पड़ा। कहा जाता है कि इस तरह से उस समय राजनीति की नकारात्मकता ने देश पर मध्यावधि चुनाव का बोझ थोप दिया। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत हार गए। ऐसे में उन्होंने 24 पार्टी वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एकजुटता की कमी का हवाला देते हुए अपनी गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय और वामपंथी समूहों के साथ बहुमत सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा सकी। 26 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने लोकसभा भंग कर दी और शीघ्र चुनाव का आह्वान किया। भाजपा ने मतदान तक अंतरिम प्रशासन के रूप में शासन जारी रखा। चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने 4 मई को की थी।
साल 1999 में हुए आम चुनाव से पहले 1996 और 1998 में चुनाव कराया गया था। 1999 का चुनाव 40 महीनों में तीसरी बार हुआ था। चुनावी धोखाधड़ी और हिंसा को रोकने के लिए देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा बलों की तैनाती की अनुमति दी गई थी और इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर 45 पार्टियों, जिनमें 6 राष्ट्रीय और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों ने 543 निर्वाचन सीटों पर चुनाव लड़ा। 6 अक्टूबर को शुरू हुई मतगणना के नतीजों से एनडीए को 298 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 136 सीटें मिली। उस आम चुनाव में एनडीए को संसद में पूर्ण बहुमत मिला था। चुनाव में भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी और उसे 183 सीटें मिली थीं। चुनाव परिणाम के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने और उनकी गठबंधन सरकार ने 13 अक्टूबर को शपथ ली। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बनाए गए थे।
12वीं लोकसभा 26 अप्रैल 1999 को भंग की गई थी और मध्यावधि चुनाव कराया गया था। 13वीं लोकसभा के लिए 1999 में चुनाव कराया गया था। उस चुनाव में मतदान की तारीख 5, 11, 18, 25 और 3 अक्टूबर 1999 को थी। 10 अक्टूबर 1999 को लोकसभा गठित हो गई। 20 अक्टूबर 1999 को सदन की पहली बैठक हुई। संविधान के अनुच्छेद 83(2) की व्यवस्था के अनुरूप कार्यकाल समाप्त होने की तिथि 19 अक्टूबर 2004 थी। हालांकि एक बार फिर सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही चुनाव कराने का निर्णय लिया और संसद को भंग कर दिया। ऐसे में मध्यावधि चुनाव कराया गया और चुनाव से पहले ही 6 फरवरी 2004 को लोकसभा भंग कर दी गई। 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान डॉ. एम.एस. गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सीईसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने 1998 में 12वीं लोकसभा और 1999 में 13वीं लोकसभा के साथ साथ 11वें राष्ट्रपति चुनाव और 1997 में उपराष्ट्रपति चुनाव के अलावा 20 से अधिक राज्यों में विधानसभाओं के आम चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इससे पहले भी वह 13 दिन और 13 महीने तक चली एनडीए सरकार के मुखिया थे। वह देश के 9वें ऐसे नेता थे जो गैर कांग्रेसी होकर भी इस पद पर पहुंचे थे। साथ ही वह पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 साल तक अपनी सरकार चलाई थी। उस चुनाव में मतदान प्रतिशत 59.55 रहा था और 169 राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया था।
श्रोताओं, चुनाव आयोग ने 1999 में लोकसभा के आम चुनावों के दौरान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 46 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का व्यापक उपयोग किया था। यह तब तक किसी चुनाव में ईवीएम का सबसे अधिक इस्तेमाल था। इन 46 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 385 विधानसभा क्षेत्र थे, जिनमें लगभग 6 करोड़ मतदाता थे। ईवीएम का उपयोग करने वाले मतदान केंद्रों की संख्या लगभग 65,000 थी, जिसके लिए लगभग 1,00,000 मशीनें जुटाई गई थीं। 1999 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 61,95,00,000 से अधिक थी। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 32,38,00,000 से अधिक थी, जो कुल मतदाताओं का 52.3% था। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 29,57,00,000 थी, जो कुल मतदाताओं का 47.7% था। 1999 में कुल 543 सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या 4,648 थी। उस चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या 37,16,69,104 थी और मतदान केंद्रों की कुल संख्या 7,74,651 थी। इस चुनाव में निर्वाचित पुरुषों की संख्या 494 थी, जबकि महिला सांसदों की संख्या 49 थी। उस चुनाव में 284 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। चुनाव में कुल निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 1,945 थी। इनमें से कुल निर्वाचित निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 6 थी और 1,928 निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। 1999 में हुए 13वें आम चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत जहां 63.97 रहा था, वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55.64% रहा था। यह आंकड़ा कुल मतदान का 59.99% था। 13वीं लोकसभा में सदस्यों की औसत आयु 55.5 वर्ष थी।
श्रोताओं, लोकसभा चुनाव के वास्तविक संचालन का सारा व्यय भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव होने पर चुनाव संचालन का सारा खर्च राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है। अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यह खर्च उठाती हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में 947 करोड़ रूपये से अधिक खर्च हुआ था। 1999 में सबसे अधिक मत से जीतने वाले उम्मीदवार कांग्रेस से के असुंगबाव संगठन थे, जो नागालैंड संसदीय सीट से निर्वाचित हुए थे। वहीं सबसे कम मतों से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार प्यारेलाल संखवार थे, जो उत्तर प्रदेश राज्य के घाटमपुर संसदीय सीट से निर्वाचित हुए थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने 105 मतों से जीत दर्ज की थी। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं आम चुनावों से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में।
नव स्वतंत्र राष्ट्र में लोकसभा की मजबूत आधारशिला किस तरह स्थापित हुई, इस बारे में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, जो वर्ष 1950 से 1958 तक इस पद पर रहे, उन्होंने आकाशवाणी पर एक भाषण में 22 जनवरी 1957 से कहा था, पुरुष और महिलाएं, परिष्कृत शहरवासी और साधारण गांव के लोग, ऊंचे और निचले, अमीर और गरीब, आदिवासी, पहाड़ी और मैदानी लोग, यानी इस महान देश के सभी नागरिक इस महान उद्यम में भाग लेने के लिए लाखों मतदान केंद्रों पर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से उन महिला और पुरुषों को चुनने के लिए जो देश की नीति का मार्गदर्शन करेंगे और अगले 5 वर्षों के लिए सरकारें बनाएंगे।
श्रोताओं, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने वोट की तुलना देवताओं की शक्ति से की थी। उन्होंने कहा था, गणतंत्र के घटक राज्यों के एकीकरण और मानकीकरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण महान लोकतांत्रिक चुनाव है, जो अब से कुछ महीनों के भीतर होने जा रहा है और यह दुनिया के इतिहास में अद्वितीय होगा। मुझे यकीन है इस देश के सोए हुए दिग्गजों को अपनी महान शक्ति और क्षमता की चेतना से जगाएगा। मैं यह आशा व्यक्त करता हूं कि जब आप अपना वोट डालेंगे और अपनी पसंद चुनेंगे तो आप सभी को वॉक्स पॉपुली वॉक्स दे कहावत याद रहेगी, अर्थात लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है। आपके पास देवताओं की शक्ति है और मुझे आशा है कि आप इसका उपयोग देवताओं की तरह करेंगे। कुछ इस तरह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 अगस्त 1951 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में मतदाताओं से प्रथम आम चुनाव में पूरी ईमानदारी और गंभीरता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। उनके शब्दों से भारत के लोगों में संविधान द्वारा प्रदत्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संभालने के प्रति उनके अटूट विश्वास का पता चलता है। ऐसे कई अन्य लोग थे जिन्होंने 1950 के दशक के अल्प साक्षर और आर्थिक रूप से अविकसित भारत में लोकतंत्र के महान प्रयोग पर अपनी उंगलियां क्रॉस कर लीं। पिछले 70 वर्षों के इतिहास ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान के अन्य निर्माताओं द्वारा भारत के लोगों में दिखाए गए अंतर्निहित विश्वास की पुष्टि की है। श्रोताओं, आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह भी लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। इसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।